नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वस्तु और सेवा कर GST में सुधार करने के निर्णय का अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने किया स्वागत। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े भारतीय सैनिकों के सम्मान में दिल्ली की सहकारी संस्थाएं रक्त बैंक की स्थापना करेंगी। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले में 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वसंत कुंज में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का दिल्ली विधानसभा में उद्घाटन किया। ये सम्मेलन केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि देश की स्वतंत्रता की तरह आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वीर विट्ठल भाई पटेल ने देश को भारतीय आदर्शों पर लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की आधारशिला रखी थी।
जितना महत्व देश को आजाद करने का है उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने।
श्री शाह ने कहा कि सदन में देश की जनता के मुद्दों को निष्पक्ष रूप से उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है कि सदन का कामकाज नियमानुसार चले। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विरोध करना सदस्यों का अधिकार है, लेकिन वे कामकाज को बाधित नहीं कर सकते।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहाँ सम्मिलित होकर के झलकता है। पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो जाएगा। ऑपोजिशन इज द राइट ऑफ द मेंबर्स। विपक्ष का काम है सरकार का आलोचना करना, लेकिन काम को बाधित करना, देश चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता है।
इस अवसर पर दिल्ली के राज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी उपस्थित रहे। इस आयोजन में राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भी शामिल हुए। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारियों को अपने अनुभव और सर्वोत्तम कार्यशैलियों को साझा करने तथा विधान मंडलों के कामकाज के नए तौर तरीके तलाशने का अवसर मिलेगा। इनमें यांत्रिक मेधा के साधनों का उपयोग करना भी शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कानून निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है। इस अवसर पर गृहमंत्री ने विट्ठल भाई पटेल और भारत में संसदीय संस्थानों के विकास से जुड़े अभिलेखों, तस्वीरों और दस्तावेजों वाली एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। विट्ठल भाई पटेल पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ठीक 100 वर्ष पूर्व 24 अगस्त 1925 को ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय मूल के विट्ठल भाई जावीर भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ये घटना भारतीयों के लिए गुलामी की जंजीरों की तोड़ने और लोकतंत्र की लौ जलाने वाली थी। मुख्यमंत्री ने आज के बाद दिल्ली विधानसभा में आयोजित भारतीय स्पीकर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि विट्ठल भाई पटेल ने अंग्रेज प्रतिनिधि को हराकर भारतीयों का गौरव बढ़ाया और स्वतंत्र भारत का वो सपना देखा जिसमें भारतीय अपने संविधान और झंडे तले नीति निर्माण करेंगे और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विधानसभाओं में बैठेंगे। वहीं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधारों में स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानमंडलों के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका पर बल दिया। स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय विधानमंडलों के राष्ट्रवादी नेताओं की स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में भूमिका विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विधानसभा के सदन का प्रतीक पत्थर उन महान आत्माओं की विरासत समेटे हुए है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया। श्री शेखावत ने विधानसभा कक्ष की तुलना सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर से करते हुए कहा कि ये सदन उन नेताओं के साहस, बलिदान और नैतिक शक्ति का सजीव साक्षी है जिन्होंने कठिनतम परिस्थितियों में पूरे देश में स्वतंत्रता की ज्योत जलाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वस्तु और सेवा कर GST में सुधार करने के निर्णय का अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने स्वागत किया है। कैट ने इस पहल को GST को वास्तविक अर्थों में उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी बताया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को भेजे एक पत्र में कैट ने कहा कि प्रधानमंत्री का GST को सरल बनाने और कर श्रेणी को तर्कसंगत करने का दृष्टिकोण देश के व्यापार तंत्र को और मजबूत करेगा, जिससे छोटे खुदरा व्यापारी, किराना स्टोर और विशेष रूप से छोटे दुकानदार लाभान्वित होंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतिया ने कहा कि जब GST कर प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है तो ऐसे में कर श्रेणी को पुनर्परिभाषित करना आवश्यक है। कैट ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित GST सुधारों के अंतर्गत कार्बोनेटेड पेय को 18% श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया जाए। यह कदम छोटे व्यापारियों को वास्तविक राहत देगा, वैल्यू चेन में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देगा और विस्तारित कर आधार से सरकार की राजस्व में वृद्धि होगी। रईसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य से हर भारतीय गौरवान्वित है। सैनिकों के सम्मान में दिल्ली की सहकारी संस्थाएं रक्त बैंक की स्थापना करेंगी। उन्होंने कहा कि इससे आपात स्थिति में दिल्ली वासियों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के निवासियों को भी लाभ होगा। सहकारिता मंत्री ने आज ये बात अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। श्री इंद्राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के दृष्टिकोण सहकारिता से समृद्धि लक्ष्य को ध्यान रखते हुए दिल्ली को सहकारिता के क्षेत्र में पूरे देश के लिए आदर्श मॉडल बनाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी क्षेत्र से 2 महिला सरगना को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की हीरोइन जब्त की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाहन, मोबाइल फोन और लगभग 23,000 रुपए नकद भी जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि शहर में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग स्थित रामलीला कमेटियों द्वारा आयोजित भूमि पूजन में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि असत्य, अन्याय और आसुरी शक्तियों से निपटकर ही राम राज्य की स्थापना होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलीला का मंचन हमारे लिए ज्ञान और आस्था का उत्सव है। इस वर्ष दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं रामलीला मंचन को और भी भव्य तथा जीवंत बनाएंगी। राजधानी में रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह आज लाल किला परेड मैदान में आयोजित होने वाली नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के पूजन में शामिल हुए। श्री सचदेवा ने पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी के साथ प्रदेश कार्यालय में दुर्गा पूजा समितियों की बैठक को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान के ग्रीष्मकालीन वार्षिक संस्करण में आज रविवार को छुट्टी वाले दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वर्ष उद्यान में पर्यटकों के बीच बाल वाटिका और बूंदशाही गार्डन आकर्षण का केंद्र है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक प्रजातियों के फूल भी आगंतुकों को खूब पसंद आ रहे हैं।
अमृत उद्यान के इस संस्करण में सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन में खिले फूल आगंतुक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आज छुट्टी वाले दिन मौसम सुहाना होने के कारण आगंतुक उद्यान का आनंद लेते हुए नजर आए। साथ ही हर्बल गार्डन में लगे औषधीय पौधों के बारे में जानकारी लेते हुए भी लोग सबसे अधिक दिखे। 14 सितंबर तक खुले इस उद्यान में सप्ताह में मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण किया जा सकता है। सोमवार को उद्यान बंद रहता है। पर्यटकों के लिए उद्यान में प्रवेश गेट नंबर 35 से है। सबसे नजदीक मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय है, जहां से पर्यटकों के लिए प्रत्येक 30 मिनट पर उद्यान के लिए शटल बस उपलब्ध है। पर्यटक मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चाबियां, पर्स, हैंडबैग, पानी की बोतलें और शिशुओं के लिए दूध की बोतलें ले जा सकते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अमृत उद्यान में प्रवेश केवल खिलाड़ियों और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सिर्फ शिक्षकों का ही होगा। उद्यान में घूमने के लिए बुकिंग और प्रवेश निशुल्क है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट से टिकट बुक की जा सकती है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान के साथ शिवांग, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अरुण जेटली की छठी पुण्यतिथि पर आज नई दिल्ली में अरुण जेटली पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी जोन ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज वसंत कुंज में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि शहर को स्वच्छ और हरा भरा रखना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है और इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि ये महज तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया अध्याय है। श्री सिंह ने ये बात नई दिल्ली में गगनयात्रियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में कही। इन यात्रियों में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की शाश्वत शिक्षाएं जीवन को आलोकित करती हैं तथा हमें करुणा, विनम्रता और सेवा के मूल्यों का विनम्र स्मरण कराती हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रज्ञा मार्ग पर चलने की अपील की है ताकि ये दुनिया एक बेहतर स्थान बन सके। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा, आजादी के बाद देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधार करने के निर्णय का अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने किया स्वागत। दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े भारतीय सैनिकों के सम्मान में दिल्ली की सहकारी संस्थाएं रक्त बैंक की स्थापना करेंगी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया और दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत वसंत कुंज में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।